ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सहकारी धोखाधड़ी और संगठित अपराध मनी लॉन्ड्री से संबंधित अपराधों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछानी के खिलाफ कास्की जिला अदालत में किया गया मुकदमा दर्ज। त्रिभुवन विश्वविद्यालय की चल अचल संपत्ति का पता लगाने के लिए और अध्ययन की जरूरत है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। मौजूदा सत्ता गठबंधन में बदलाव की कोई संभावना नहीं है, सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने किया स्पष्ट। और भारत मुंबई फेरी हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 15। अब समाचार विस्तार से। सहकारी ठगी मामले के आरोपी रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछानी के विरुद्ध सहकारी ठगी के साथ साथ संगठित अपराध और संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी केस आज अदालत में दर्ज किया गया है। पोखरा के सूर्य दर्शन सहकारी की बचत रकम अपचलन के मामले में गिरफ्तार होकर कास्की जिला प्रहरी की हिरासत में रहे लामिछानी के विरुद्ध आज कास्की जिला अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जानकारी जिला सरकारी वकील कार्यालय कास्की के सहायक जिला न्यायाधिवक्ता शांति देवी शर्मा ने दी। उनके विरुद्ध संपत्ति शुद्धिकरण में 27,89,44,000 रूपये और सहकारी ठगी मामले में 3,37,65,000 रूपये भरवाने का क्लेम भी किया गया है। बता दें कि रासोपा सभापति लामिछानी सहित सहकारी ठगी मामले से जुड़े राम बहादुर खनाल, छबीलाल जोशी और लीला पछाई के विरुद्ध भी आज संपत्ति शुद्धिकरण मामले में केस दायर किया गया है। उनके साथ ही सहकारी ठगी के अन्य आरोपियों के ऊपर भी अलग अलग अमाउंट क्लेम किया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर का पालन करने और पारदर्शिता कायम करने का निर्देश किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे प्रधानमंत्री ओली की अगुवाई में त्रिवी की समस्या और सुधार के विषय में विमर्श के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए विश्वविद्यालय सभा की अनौपचारिक बैठक में उन्होंने ऐसा निर्देश किया। उन्होंने अपनी रुचि जाहिर करते हुए कहा कि वे विश्वविद्यालय में सचमुच की मेरिटोक्रेसी कायम होकर यहां से सक्षम जनशक्ति उत्पादन होते देखना चाहते हैं। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता से देश को निकास देकर विकास को देना सरकार का पहला दायित्व है। मंत्रिपरिषद की पूछ 5 गति की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार मंत्री गुरुंग ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने परसा के पोखरिया अस्पताल को 50 शैया के अस्पताल में स्तरोन्नत कर मध्य प्रदेश सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है। इसी तरह बैठक ने छोटी और मध्यम संगठित संस्थानों की सिक्योरिटी निष्कासन तथा कारोबार नियमावली 2081 बनाने के लिए सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ नेपाल को स्वीकृति देने, नेपाली हवाई सेवा प्राधिकरण की स्थापना और व्यवस्थापन करने के लिए बने विधेयक 2081 और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संबंधी कानून के संशोधन और एकीकरण करने के लिए बने विधेयक 2081 को संघीय संसद में पेश करने की स्वीकृति देने लगाए निर्णय किए। संघीय संसद के सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि संसदीय समिति की विधेयक समिति में कोरम पूरा न होने के कारण बैठक न हो पाने के संदर्भ में बैठक में न आने वाले सदस्यों से स्पष्टीकरण लेने का माहौल बनाना जरूरी है। आज कावरे प्लान चौक में एक कार्यक्रम के दौरान सभामुख घिमिरे ने कहा कि विधेयक समिति की बैठक न होने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सरोकार वाले सभी पक्षों को प्रयास करने की जरूरत है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने डेनमार्क के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत पद पर सुमिनमा तुलाधर को नियुक्त किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल के संविधान के मुताबिक मंत्रिपरिषद की सिफारिश में तुलाधर को आज राजदूत पद पर नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। प्रतिनिधि सभा की अर्थ समिति की आज की बैठक ने सुरक्षित कारोबार प्रथम संशोधन विधेयक 2080 संशोधन सहित पारित किया है। ये जानकारी समिति के सभापति संतोष चालीसे ने दी। सभापति चालीसे ने विधेयक के ऊपर संशोधन प्रतिवेदन 2 दिनों के भीतर तैयार करने का समिति के सचिवालय को निर्देश भी किया है। सरकार ने शांतिपूर्ण राजनीति में आए दल के नेताओं के खिलाफ सरकार को वादी बनाकर चलाए गए मुकदमे को वापस लेने के हिसाब से लाए गए प्रावधान को वापस लेने का प्रस्ताव किया है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति की आज की बैठक में कानून मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने प्रस्तावित विधेयक की दफा 64 को वापस लेने की घोषणा की। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ने केंद्रीय सचिवालय की बैठक बुलाई है। इसी पूछ 10 गते ललितपुर के च्यासल स्थित एमाले केंद्रीय कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। ये जानकारी एमाले केंद्रीय प्रचार विभाग के प्रमुख राजेंद्र गौतम ने दी। मोगलिंग काठमांडू मार्ग आज से हर दिन 3 घंटे बंद रहेगा। नागढुंगा मोगलिंग सड़क परियोजना ने सूचित किया है कि उन्नयन के साथ साथ निर्माणाधीन सड़क के विस्तार के दौरान घुमती सहित कुछ स्थानों को काटने की आवश्यकता के कारण आज से इसी पूछ 13 गति तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सड़क बंद रहेगी। परियोजना ने एक सूचना जारी कर पृथ्वी राजमार्ग के माध्यम से काठमांडू आने जाने वाले चालकों से लेन अनुशासन का पालन कर वाहन चलाने का अनुरोध किया है। उस दौरान एम्बुलेंस, पुलिस वाहन और दमकल जैसे आपातकालीन वाहनों के संचालन में कोई रुकावट नहीं होगी। प्रतिनिधि सभा की महिला तथा सामाजिक मामला समिति ने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय के पहचान के संबंध में सरोकार वालों से विचार विमर्श किया है। समिति की आज की बैठक में विचार विमर्श हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के मुंबई फेरी हादसे में मरने वालों की संख्या 15 पहुंच गई है। मरने वालों में 8 पुरुष, 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल है। इस हादसे में 2 लोग अब भी लापता हैं। 43 साल के हंसराम भाटी का शव भावचा धक्का में मिला है। वहीं 7 साल के बच्चे का शव मुंबई के हार्वर में शनिवार को मिला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को हादसे की जानकारी देते हुए बताया था कि हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने मरने वालों के परिवारों को 5-5 रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया था। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी हादसे पर संवेदना व्यक्त की थी। पीएम कार्यालय ने मृतकों के परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में सुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी धोखाधड़ी और संगठित अपराध मनी लॉन्ड्री से संबंधित अपराधों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने के खिलाफ कास्की जिला अदालत में किया गया मुकदमा दर्ज। त्रिभुवन विश्वविद्यालय की चल अचल संपत्ति का पता लगाने के लिए और अध्ययन की जरूरत है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। मौजूदा सत्ता गठबंधन में बदलाव की कोई संभावना नहीं है, सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने किया स्पष्ट। और भारत मुंबई फेरी हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 15। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।